नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो के ऊर्जा रूपांतरण जगत में। अपनी किसी भी ऊर्जा का दमन नहीं, वरन रूपांतरण। और रूपांतरण के लिए आवश्यक दो अंग हैं, फैक्ट को, तथ्य को सजगता पूर्वक देखना। दूसरा अंग है तथ्यों का, फैक्ट्स का संपूर्णता से स्वीकार।
Showering your love on the Buddha in me, your love on the Buddha in me. This precious moment, breathe in your silence, shower your love on the Buddha in me, your love on. This precious moment, breathe in your silence, shine your love on the Buddha in me, your love on the Buddha in me. This precious moment, breathe in your silence, shine your love on the Buddha in me. Your love on the Buddha in me. This precious moment, breathe in your silence, shine your love on the Buddha in me. Your love on the Buddha in me. This precious moment, breathe in your silence.
Breathe in your time.
आज का प्रवचन एस धम्मो सनंतनो प्रवचन माला के 11 नंबर प्रवचन से लिया गया है, जिसमें हमें बुद्ध दमन नहीं दर्शन का रास्ता बताते हैं। बुद्ध के सूत्रों की व्याख्या करते हुए ओशो कहते हैं, वास्तविक स्वीकार कोई इस तरह का स्वीकार नहीं है। वास्तविक स्वीकार तो अस्वीकृति और स्वीकृति दोनों का ना होना है। व्यक्ति बस जानता है कि ऐसा है, चीजों की यथा स्थिति तथाता। इसीलिए बुद्ध का एक सुंदर नाम हुआ तथागत, जो यथा स्थिति में जीता है, ना अस्वीकार और ना स्वीकार, चाहे जैसी भी स्थिति हो, मात्र देखना। आइए ओशो से सुनते हैं, ओशो से समझते हैं और फिर अनुभव में उतरते हैं।
सुलगना और जीना सुलगना और जीना, यह कोई जीने में जीना है। लगा दे आग अपने दिल में दीवाने, धुआं कब तक। ये जो होने की आकांक्षा है, इससे आग नहीं पैदा होती, सिर्फ धुआं ही धुआं पैदा होता। बुद्ध का वचन है कि वासना से भरा चित गीली लकड़ी की भांति है, उसमें आग लगाओ तो लपट नहीं निकलती, धुआं ही धुआं निकलता है। लकड़ी जब सूखी होती तब उससे लपट निकलती। जब तक वासना है तुम्हारी समझ में, तुम्हारे जीवन में आग ना होगी, तुम्हारे जीवन में रोशनी और प्रकाश ना होगा, धुआं ही धुआं होगा। अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें खराब हुई जा रही, अपने ही धुएं से तुम देखने में असमर्थ हुए जा रहे, अंधे हुए जा रहे, अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी और जीवन का सत्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। सुलगना और जीना, यह कोई जीने में जीना है। लगा दे आग अपने दिल में दीवाने, धुआं कब तक। लेकिन धुआं तब तक उठेगा ही जब तक कोई भी वासना का गीलापन तुम में रह गया। लकड़ी जब तक गीली है धुआं उठेगा, लकड़ी से धुआं नहीं उठता, गीलेपन से धुआं उठता है, लकड़ी में छिपे जल से धुआं उठता है। तुमसे धुआं नहीं उठ रहा है, तुम्हारे भीतर जो वासना की आर्द्रता है, गीलापन है, उससे धुआं उठ रहा है। त्यागी बुद्ध ने उसको कहा है जो सूखी लकड़ी की भांति है, जिसने वासना का सारा ख्याल छोड़ दिया, जिसका निग्रह करना बहुत कठिन है और जो बहुत तरल है, हल्के स्वभाव का है और जो जहां चाहे वहां जट चला जाता है, ऐसे चित्त का दमन करना श्रेष्ठ है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। दमन शब्द को ठीक से समझ लेना। उस दिन इसके अर्थ बहुत अलग थे जब बुद्ध ने इसका उपयोग किया था, अब अर्थ बहुत अलग है। फ्रायड के बाद दमन शब्द के अर्थ बिल्कुल दूसरे हो गए। भाषा वही नहीं रह जाती, रोज बदल जाती है। भाषा तो प्रयोग पर निर्भर करती है। बुद्ध के समय में, पतंजलि के समय में, दमन का अर्थ बड़ा और था। दमन का अर्थ था मन में, जीवन में, तुम्हारे अंतरतम में। अगर तुम क्रोध कर रहे हो या तुम अशांत हो, बेचैन हो, तो तुम एक विशिष्ट मात्रा की ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। स्वभावतः जब तुम क्रोध करोगे थकोगे, क्योंकि ऊर्जा नष्ट होगी। जब तुम काम वासना से भरोगे तब भी ऊर्जा नष्ट होगी। जब तुम उदास होगे, दुखी होगे, तब भी ऊर्जा नष्ट होगी। एक बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ शांति के क्षणों में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, और आनंद के क्षणों में ऊर्जा बढ़ती, नष्ट होना तो दूर, विकसित होती, प्रमुदित होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं अप्रमाद में प्रमुदित हो। दुख में घटती है, शांति में स्थिर रहती है, आनंद में बढ़ती है। और जब भी तुम कोई नकारात्मक, निषेधात्मक भाव में उलझते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, तुम में छेद हो जाते, जैसे घड़े में छेद हो और तुम उसमें पानी भर के रख रहे हो, वो बाहर जा रहा है। बुद्ध जब या पतंजलि जब कहते हैं दमन, चित्त का दमन, तो वो ये नहीं कहते कि चित्त में क्रोध को दबाना है। वो ये कहते हैं कि चित्त में जिन छिद्रों से ऊर्जा बहती है, उन छिद्रों को बंद करना है, और जो ऊर्जा क्रोध में संलग्न होती है, उस ऊर्जा को जीवन की विधायक दिशाओं में संलग्न करना है। इसे कभी ख्याल करके देखो, तुम्हारे मन में क्रोध उठा है, किसी ने गाली दे दी, या किसी ने अपमान कर दिया, या घर में किसी ने तुम्हारी कोई बहुमूल्य चीज तोड़ दी और तुम क्रोधित हो गए हो, एक काम करो, जाके घर के बाहर बगीचे में कुदाली लेके एक 2 फीट का गड्ढा खोद डालो और तुम बड़े हैरान हो गए कि गड्ढा खोदते खोदते क्रोध तिरोहित हो गए। क्या हुआ? जो क्रोध तुम्हारे हाथों में आ गया था, जो किसी को मारने को उत्सुक हो गया था, वो ऊर्जा उपयोग कर ली गई। या घर के दौड़ के तीन चक्कर लगाओ और तुम पाओगे कि लौट के तुम हल्के हो गए। वो जो क्रोध उठा था जा चुका। ये तो क्रोध का रूपांतरण हुआ, इसको ही बुद्ध और महावीर और पतंजलि ने दमन कहा है। फ्रायड ने दमन कहा है, तुम्हारे भीतर क्रोध उठा उसको भीतर दबा लो, प्रकट मत करो, तो खतरनाक है, तो बहुत खतरनाक है। उससे तो बेहतर है तुम प्रकट कर दो, क्योंकि क्रोध अगर भीतर रह जाएगा नासूर बनेगा। नासूर अगर संभालते रहे सेते रहे तो आज नहीं कल कैंसर हो जाएगा। जितनी मनुष्यता सभ्य होती चली जाती है उतनी खतरनाक बीमारियों का फैलाव बढ़ता जाता है। कैंसर बड़ी नई बीमारी है, वो बहुत सभ्य आदमी को ही हो सकती है, जंगलों में रहने वाले लोगों को नहीं होती। आयुर्वेद में तो कुछ लोगों को राजरोग कहा गया, वो सिर्फ राजाओं को ही होते थे। क्षय रोग को राजरोग कहा है, वो हर किसी को नहीं होता था। उसके लिए बहुत सभ्यता का तल चाहिए, बहुत सुसंस्कारित जीवन चाहिए, जहां तुम अपने भावावेशों को सुगमता से प्रकट न कर सको, जहां तुम्हें झूठे भाव प्रकट करने पड़े, जहां रोने की हालत हो वहां मुस्कुराना पड़े, और जहां गर्दन मिटा देने की तोड़ देने की इच्छा हो रही थी वहां धन्यवाद देना पड़े। तो तुम्हारे भीतर ये दबे हुए भाव धीरे धीरे घाव बन जाएंगे। फ्रायड का कहना बिल्कुल सच है कि दमन खतरनाक है, लेकिन बुद्ध महावीर और पतंजलि जिसको दमन कहते हैं वो खतरनाक नहीं, वो किसी और ही बात को दमन कहते हैं। वो कहते हैं दमन रूपांतरण को, निषेध को विधेयक में बदल देने को वो दमन कहते हैं। और उसी मन को वो कहते हैं सुख उपलब्ध होगा, दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। वो लक्षण जिसको फ्रायड दमन कहता है, वो चित्त तो बड़ा दुखदायी हो जाता है, वो तो बड़ी दुख से भर जाता है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। तो ध्यान रखना, फ्रायड के अर्थों में दमन से बचना और बुद्ध के अर्थों में दमन को करना। क्रोध उठे तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उठी है उसका कुछ उपयोग करो, अन्यथा वो घातक हो जाएगी। अगर तुम दूसरे के ऊपर क्रोध को फेंकोगे तो दूसरे को नुकसान होगा, और क्रोध और क्रोध लाता है, वैर से वैर मिटता नहीं, उसका कोई अंत नहीं है, वो सिलसिला अंतहीन है। अगर तुम क्रोध को भीतर दबाओगे तो तुम्हारे भीतर घाव हो जाएगा, वो घाव भी खतरनाक है, वो तुम्हें रुग्ण कर देगा, तुम्हारे जीवन की खुशी खो जाएगी। तो ना तो दूसरे पर क्रोध फेंको, ना अपने भीतर क्रोध को दबाओ, क्रोध को रूपांतरित करो। घृणा उठे, क्रोध उठे, ईर्ष्या उठे, इन शक्तियों का सदुपयोग करो। मार्ग के पत्थर भी बुद्धिमान व्यक्ति मार्ग की सीढ़ियां बना लेते, और तब तुम बड़े सुख को उपलब्ध होगे। दो कारण से, एक तो क्रोध करके जो दुख उत्पन्न होता वो नहीं होगा, क्योंकि तुमने किसी को गाली दे दी, इससे कुछ सिलसिला अंत नहीं हो गया, वो दूसरा आदमी फिर गाली देने की प्रतीक्षा करेगा, अब उसके ऊपर क्रोध घिरा है, वो भी तो क्रोध करेगा। अगर तुमने क्रोध को दबा लिया तो तुम्हारे भीतर के स्रोत विषाक्त हो जाते, क्रोध जहर है, तुम्हारे जीवन का सुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तुम फिर प्रसन्न नहीं हो सकते, प्रसन्नता खो ही जाती है। तुम हंसोगे भी तो झूठ, ओंठों पर रहेगी हंसी, तुम्हारे प्राण तक उसका कंपन न पहुंचेगा, तुम्हारे हृदय से न उठेगी, तुम्हारी आंखें कुछ और कहेंगी, तुम्हारे ओंठ कुछ और कहेंगे, तुम धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में टूट जाओगे। तो न तो दूसरे पर क्रोध करने से तुम सुखी हो सकते हो, क्योंकि कोई दूसरे को दुखी करके कब सुखी हो पाया, और न तुम अपने भीतर क्रोध को दबा के सुखी हो सकते हो, क्योंकि वो क्रोध उबलने के लिए तैयार होगा, इकट्ठा होगा, और रोज रोज तुम क्रोध को इकट्ठा करते चले जाओगे, भीतर भयंकर उत्पात हो जाएगा। किसी भी दिन तुमसे पागलपन प्रकट हो सकता है, किसी भी दिन तुम विक्षिप्त हो सकते हो। एक सीमा तक तुम बैठे रहोगे अपने ज्वालामुखी पर, लेकिन विस्फोट किसी न किसी दिन होगा। दोनों ही खतरनाक है। रूपांतरण चाहिए। क्रोध की ऊर्जा को विधेय में लगा दो। कुछ न करते बन सके दौड़ाओ, क्रोध उठा है नाच लो। तुम थोड़ा प्रयोग करके देखो, जब क्रोध उठे तो नाच के देखो, जब क्रोध उठे तो एक गीत गा के देखो, जब क्रोध उठे तो घूमने निकल जाओ, जब क्रोध उठे तो किसी काम में लग जाओ, खाली मत बैठो, क्योंकि जो ऊर्जा है उसका उपयोग कर लो, और तुम पाओगे कि जल्दी ही तुम्हें एक सूत्र मिल गया, एक कुंजी मिल गई कि जीवन के सभी निषेधात्मक भाव उपयोग किए जा सकते हैं, राह के पत्थर सीढ़ियां बन सकते हैं। जमीनों आसमां से तंग है तो छोड़ दे उनको, मगर पहले नए पैदा जमीनों आसमां कर ले। ध्यान रखना, जो गलत है उसे छोड़ने से पहले सही को पैदा कर लेना जरूरी है, नहीं तो गलत की जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कहां जाएगी। तुम मेरे पास आते हो कि क्रोध हमें छोड़ना है, लेकिन क्रोध में बहुत ऊर्जा सन्निविष्ट है, तुमने बहुत सी शक्ति क्रोध में लगाई है, काफी इन्वेस्ट किया है क्रोध में। अगर आज क्रोध एकदम बंद हो जाएगा तो तुम्हारी ऊर्जा जो क्रोध से मुक्त होगी उसका तुम क्या करोगे, वो तुम्हारे ऊपर बोझिल हो जाएगी, वो भार हो जाएगी, तुम्हारी छाती पे पत्थर हो जाएगी। जमीनों आसमां से तंग है तो छोड़ दे उनको, जिस चीज से भी तंग हो उसे छोड़ना ही है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, मगर पहले नए पैदा जमीनों आसमां कर ले। अगर ये जमीन और आसमां छोड़ने तो दूसरे जमीन और आसमां भीतर पैदा कर ले, फिर उनको छोड़ देना। पैदा करना पहले जरूरी है। गलत को छोड़ने से ज्यादा अंधेरे से लड़ने की बजाय रोशनी को जला लेना जरूरी है। गलत से मत लड़ो, ठीक में जागो, सम्यक को उठाओ, ताकि तुम्हारी ऊर्जा जो गलत से मुक्त हो वो सम्यक की धारा में प्रवाहित हो जाए, अन्यथा उसकी बाढ़ तुम्हें डुबा देगी। उसकी बाढ़ के लिए तुम पहले से नहरें बना लो, ताकि उनको तुम अपने जीवन के खेतों तक पहुंचा सको, ताकि तुम्हारे दबे बीज अंकुरित हो सके, ताकि तुम जीवन की फसल काट सको। दूरगामी अकेला विचरने वाला अशरीरी सूक्ष्म और गूढ़ा सही इस चित्त को जो संयम करते हैं वे ही मार के बंधन से मुक्त होते हैं। बंधन से मुक्त होने की उतनी चेष्टा मत करना जितना संयम। संयम शब्द भी समझने जैसा है, इसका अर्थ कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। संयम का अर्थ होता है संतुलन। ये शब्द विकृत हो गया है, गलत लोगों ने बहुत दिन तक इसकी गलत व्याख्या की है। तुम जो आदमी नियंत्रण करता उसको संयमी कहते हो, मैं उसे संयमी कहता हूं जो संतुलन करता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। नियंत्रण करने वाला दमन करता है फ्रायड के अर्थों में, संतुलन करने वाला दमन करता है बुद्ध के अर्थों में। संतुलन करने वाले को नियंत्रण नहीं करना पड़ता, नियंत्रण तो उसी को करना पड़ता है जिसके जीवन में संतुलन नहीं, जिसके जीवन में डर है, अगर उसने संतुलन न रखा, नियंत्रण न रखा, तो चीजें हाथ के बाहर हो जाएंगी। जो डरा डरा जीता है, तुम्हारे साधु सन्यासी ऐसे ही जी रहे हैं, डरे डरे, कपे कपे, पूरे वक्त घबराए हुए कि कहीं कोई भूल ना हो जाए। ये तो भूल से बहुत ज्यादा संबंध हो गया, ये तो भूल से बड़ा भय हो गया, कहीं भूल ना हो जाए। जीवन की दिशा ठीक करने की तरफ होनी चाहिए, भूल से बचने की तरफ नहीं। ध्यान रखना, जो आदमी भूल से ही बच रहा है वो कहीं भी ना पहुंच पाएगा, क्योंकि जो भूल से बहुत डर गया वो चल ही ना सकेगा, उसे डर ही लगा रहेगा कहीं भूल ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम में ईर्ष्या पैदा हो जाए तो वो प्रेम ही ना करेगा, क्योंकि ईर्ष्या का भय है। किसी से संबंध ना बनाएगा कि कहीं संबंध में कहीं शत्रुता ना आ जाए, शत्रुता का भय है, तो मित्रता से वंचित रह जाए। और अगर तुम शत्रु ना भी बनाए और मित्र भी ना बना सके तो तुम्हारा जीवन एक रेगिस्तान होगा। तुम ईर्ष्या से बच गए लेकिन साथ ही साथ प्रेम भी ना कर पाए तो तुम्हारा जीवन एक सूखा, रसहीन मरुस्थल होगा, जिसमें कोई मरुद्धान भी ना होगा, जिसमें छाया की कोई जगह ना होगी। ईर्ष्या से बचना है, प्रेम से नहीं बच जाना है। इसलिए ध्यान प्रेम पर रखना, ध्यान ईर्ष्या से मत डरे रहना, भूल से मत डरना। दुनिया में एक ही भूल है और वो भूल से डरना है, क्योंकि वैसा आदमी फिर चल ही नहीं पाता, उठ ही नहीं पाता, वो घबरा के बैठ जाता है। तो नियंत्रण तो कर लेता है लेकिन जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाता, मुर्दा हो जाता है, महाजीवन को उपलब्ध नहीं होता। संसार से तुम भाग सकते हो लेकिन वो भागना अगर नियंत्रण का है तो तुम संसारिक से भी नीचे उतर जाओगे, तुम्हारे जीवन में मरघट की शांति होगी, शिवालय की नहीं। तुम्हारे जीवन में रिक्तता का शून्य होगा, ध्यान का नहीं। और खालीपन में और ध्यान में बड़ा फर्क है। मन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ माइंड में, और मन के अनुपस्थित हो जाने में बड़ा फर्क है। तो अगर तुम पीछे सिकुड़ गए, डर गए, तो यह हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में गलतियां ना हो लेकिन ठीक होना भी बंद हो जाएगा। यह बड़ा महंगा सौदा हुआ, गलतियों के पीछे ठीक को गंवा दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे सोने में कहीं कूड़ा करकट ना हो, इस डर से सोने को भी फेंक दिया। कूड़ा करकट फेंकना जरूरी है, सोने को शुद्ध करना जरूरी, लेकिन कूड़े करकट का भय बहुत ना समा जाए। संयम का अर्थ है जीवन संतुलित हो, संतुलन का अर्थ है जीवन बोधपूर्वक हो, अप्रमाद का हो, तुम एक एक कदम होश पूर्वक उठाओ। गिरने का डर मत रखो, गिरना भी पड़े तो घबराने की बात नहीं, संभलने की क्षमता पैदा करो। गिर पड़ो तो उठने की क्षमता पैदा करो, भूल हो जाए तो ठीक करने का बोध पैदा करो। लेकिन चलने से मत डर जाना, किनारे उतर के बैठ मत जाना कि रास्ते पे कांटे भी हैं, भूले भी हैं, लुटेरे भी हैं, लूट लिए जाएंगे, भटक जाएंगे, इससे तो चलना ही ठीक नहीं। भारत में यही हुआ, बहुत से लोग रास्ते के किनारे उतर के बैठ गए, भारत मर गया, धार्मिक नहीं हुआ, सिर्फ मुर्दा हो गया। इससे तो पश्चिम के लोग बेहतर थे, भूले उन्होंने बहुत की, भूलों से भी क्या डरना, लेकिन जिंदा है, और जिंदा है तो कभी ठीक भी कर सकते हैं। मुर्दा हो जाना धार्मिक हो जाना नहीं, धार्मिक हो जाना सोने से कचरे को जरा डालना है, लेकिन कचरे के साथ, कचरे के डर से सोने को फेंक देना नहीं। तो पश्चिम के धार्मिक होने की संभावना है लेकिन पूरा बिल्कुल ही जड़ हो गया है। सत्य के साथ भी हमने सौभाग्य नहीं उपलब्ध किया। सत्य हमें बहुत बार उपलब्ध हुआ, बहुत बुद्धों से हमें उपलब्ध हुआ, लेकिन हमने सत्य के जो अर्थ निकाले उनने हमें संकुचित कर दिया, उनने हमें दायरे बना दिए, मुक्त नहीं किया, असीमा नहीं थी। असीम की हमने बात की उपनिषदों से लेकर आज तक, लेकिन हर चीज ने सीमा दे दी। संयम को नियंत्रण मत समझना, संयम को होश समझना। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सद्धर्म को नहीं जानता है और जिसकी श्रद्धा डमाडोल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। अब मुझको करार तो सबको करार है, दिल क्या ठहर गया कि जमाना ठहर गया। अब मुझे चैन मिल गई तो सबको चैन मिल गई। तुम्हारा संसार तुम्हारा ही प्रक्षेपण है। अगर तुम बेचैन हो तो सारा संसार तुम्हें चारों तरफ बेचैन मालूम पड़ता है। अगर तुमने शराब पी ली है और तुम्हारे पैर डगमगाते हैं तो तुम्हें रास्ते के किनारे खड़े मकान भी डगमगाते दिखाई पड़ते हैं। रास्ते पे जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता वो डगमगाता दिखाई पड़ता है। जिसका चित्त अस्थिर है वो जिस संसार में जिएगा वो क्षणभंगुर होगा, चंचल होगा। संसार चंचल नहीं है, तुम्हारे मन के डमाडोल होने के कारण सब डमाडोल दिखाई पड़ता है। अब मुझको करार तो सबको करार है, दिल क्या ठहर गया कि जमाना ठहर गया। तुम ठहरे कि सब ठहर गया, तुम रुके कि सब रुक गया, तुम चले कि सब चल पड़ता है। तुम्हारा संसार तुम्हारा ही फैलाव है, तुम ही हो तुम्हारे संसार। जिसका चित्त अस्थिर है उसका सब अस्थिर होगा। जब भीतर की ज्योति ही डगमगा रही है तो तुम्हें सब डगमगाता दिखाई पड़ेगा। कभी तुमने ख्याल किया घर में दिया जल रहा हो और उसकी ज्योति डगमगाती हो तो सब तरफ छायाएं डगमगाती हैं, दीवार पर बनते हुए बिंब डगमगाते हैं, सब चीजें डगमगाती हैं। छाया ठहर जाएगी अगर ज्योति ठहर जाए, और छाया को ठहराने की कोशिश में मत लग जाना। छाया को कोई नहीं ठहरा सकता, तुम कृपा करके ज्योति को ही ठहराना। लोग संसार से मुक्त होने में लग जाते हैं, कहते हैं क्षणभंगुर है, चंचल है, आज है कल नहीं रहेगा। ये सब तुम्हारे भीतर के कारण, तुम्हारा मन डमाडोल है इसलिए सारा संसार डमाडोल है। तुम ठहरे कि सब ठहरा, तुम ठहरे कि जमाना ठहर गया। जो सद्धर्म को नहीं जानता है, जिसकी श्रद्धा डमाडोल है, अब ये बड़े मजे की बात है। बुद्ध कह रहे हैं जो सद्धर्म को नहीं जानता उसकी ही श्रद्धा डमाडोल है। सारे धर्मों ने श्रद्धा को पहले रखा है, बुद्ध ने ज्ञान को पहले रखा है। वो कहते हैं सद्धर्म को जानोगे तो श्रद्धा ठहरेगी, और धर्मों ने कहा श्रद्धा करोगे तो सद्धर्म को जानोगे, और धर्मों ने कहा है मानोगे तो जानोगे। बुद्ध ने कहा है जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, जानोगे तो ही मानोगे। बुद्ध की बात इस सदी के लिए बहुत काम की हो सकती, ये सदी बड़ी संदेह से भरी है, इसलिए श्रद्धा की तो बात ही करनी फिजूल है। जो कर सकता है उससे कहने की कोई जरूरत नहीं, जो नहीं कर सकते उनके से कहना बार बार कि श्रद्धा करो व्यर्थ है। वो नहीं कर सकते वो क्या करें, तुम श्रद्धा की बात करो तो उस पर भी उन्हें शक आता है। शक आ गया तो आ गया, हटाने का उपाय नहीं, और शक आ चुका है। ये सदी संदेह की सदी है, इसलिए बुद्ध का नाम इस सदी में जितना मूल्यवान मालूम होता है किसी का भी नहीं, उसका कारण यही है। जीसस या कृष्ण बहुत दूर मालूम पड़ते, क्योंकि श्रद्धा से शुरुआत है, श्रद्धे नहीं जमती तो शुरुआत ही नहीं होती, पहला कदम ही नहीं उठता। बुद्ध कहते हैं श्रद्धा की फिक्र छोड़ो, जान लो सब धर्म को, तथ्य को, और जानने का उपाय है स्थिर हो जाओ। बुद्ध ने यह कहा है कि ध्यान के लिए श्रद्धा आवश्यक नहीं है, ध्यान तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए तुम ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो कुछ प्रयोजन नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम ध्यान कर सकते हो, ध्यान तुम करोगे तुम भीतर स्थिर होने लगोगे। उस स्थिरता के लिए किसी ईश्वर का आकाश में होना आवश्यक ही नहीं है। ईश्वर ने संसार बनाया या नहीं बनाया इससे उस ध्यान के स्थिर होने का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान का स्थिर होना तो वैसे ही है जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला और पानी बन जाए, तो कोई वैज्ञानिक नहीं कहता कि पहले ईश्वर को मानो तब पानी बनेगा। ध्यान तो एक वैज्ञानिक प्रयोग है, तुम भीतर स्थिर होने की कला को सीख जाओ, सद्धर्म से परिचय होगा, परिचय से श्रद्धा होगी। इसलिए बुद्ध जितने करीब हैं इस सदी के और कोई भी नहीं, क्योंकि ये सदी संदेह की, और बुद्ध ने श्रद्धा पर जोर नहीं दिया, बोध पर जोर दिया है। जो सद्धर्म को नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा डमाडोल है होगी ही, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। बुद्ध शर्त नहीं दे रहे हैं, बुद्ध केवल तथ्य दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं ये तथ्य है, सद्धर्म का बोध हो श्रद्धा होगी, श्रद्धा हो परिपूर्णता होगी, प्रज्ञा परिपूर्ण होगी। ऐसा न हो तो प्रज्ञा परिपूर्ण न होगी, और जब तक प्रज्ञा परिपूर्ण न हो, जब तक तुम्हारा जानना परिपूर्ण न हो, तुम्हारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता। जानने में ही छिपे हैं सारे स्रोत, क्योंकि मूलतः तुम ज्ञान हो, ज्ञान की शक्ति हो, मूलतः तुम बोध हो। इसी से तुमने बुद्ध को बुद्ध कहा, बोध के कारण। नाम तो उनका गौतम सिद्धार्थ था, लेकिन जब वे परम प्रज्ञा को और बोध को उपलब्ध हुए तो हमने उन्हें बुद्ध कहा। तुम्हारे भीतर भी बोध उतना ही छिपा है जितना उनके भीतर था, वो जग जाए तो तुम्हारे भीतर भी बुद्धत्व का आविर्भाव होगा, और जब तक ये ना हो तब तक चैन मत लेना, तब तक सब चैन झूठी है। सांत्वना मत कर लेना, तब तक सांत्वना संतोष नहीं है, तब तक तुम मार्ग में ही रुक गए, मंजिल के पहले ही किसी पड़ाव को मंजिल समझ लिया। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, और जिसकी श्रद्धा डमाडोल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती, और प्रज्ञा परिपूर्ण ना हो तो तुम अपूर्ण रहोगे, और तुम अपूर्ण रहो तो अशांति रहेगी, और तुम अशांत रहो तो दो ही उपाय, एक कि तुम शांति को खोजने निकलो, और दो कि तुम अशांति को समझो। अशांति को समझना बुद्ध का उपाय है, जिसने अशांति को समझ लिया वो शांत हो जाता है, और जो शांति की तलाश में निकल गया वो और नई नई अशांतियां मोल ले लेता है। जीवन को जीने के दो ढंग हैं, एक मालिक का और एक गुलाम का। गुलाम का ढंग भी कोई ढंग है, जीना हो तो मालिक होकर ही जीना, अन्यथा इस जीवन से मर जाना बेहतर है। कम से कम मर जाना सच तो होगा, ये जीवन तो बिल्कुल झूठा है, सपना है। गुलाम के ढंग से तुमने जी के देख लिया, कुछ पाया नहीं, यद्यपि पाने ही पाने की तलाश रही। अब मालिक के ढंग से जीना देख लो, बस शास्त्र बदलना होगा, सूत्र बदलना होगा, इतना ही फर्क करना होगा। अब तक कल के लिए जीते थे, अब आज ही जियो। अब तक कुछ होने के लिए जीते थे, अब जो हो वैसे ही जियो। अब तक मूर्छा में जीते थे, अब जागकर जियो, होश से जियो। और ध्यान रखना, प्रत्येक कदम होश का बुद्धत्व को करीब लाता है। प्रत्येक कदम होश का तुम्हारे भीतर बुद्धत्व के झरनों को सक्रिय करता है। मेघ किसी भी क्षण बरस सकता है, तुम जरा संयोजन बदलो और सब तुम्हारे पास कुछ जोड़ना नहीं, और कुछ तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जिसे हटाना है। वीणा के तार ढीले टूटे, जोड़ना है, व्यवस्थित कर देना है। उंगलियां भी तुम्हारे पास हैं, वीणा भी तुम्हारे पास है, सिर्फ उंगलियों का वीणा पर, वीणा के तारों पर खेलने का संयोजन करना है। किसी भी क्षण संयम बैठ जाएगा, संगीत उत्पन्न हो सकता है। आज इतना ही।
आज का ध्यान है शांति सूत्र, नियति की स्वीकृति। ओशो से किसी ने प्रश्न किया, जीवन में छोटे बड़े दुख के कारण कभी कभी मन अशांत, निराश और बेचैन बन जाता है, तो संसार में ही रहकर मन सदा शांत, प्रसन्न और उत्साही कैसे रखें? ओशो ने कहा, नियति की जो बात हम कर रहे हैं उसे अगर ठीक से समझ लें तो मन शांत हो जाएगा, और कोई भी उपाय मन को शांत करने का नहीं है, और सब उपाय ऊपरी ऊपरी हैं, उनसे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है लेकिन मन शांत नहीं हो सकता। नियति का विचार यह कहता है कि आप कुछ करें मत, आप कर नहीं सकते कुछ, आप सिर्फ राजी हो जाएं। इसका प्रयोग करके देखें, अशांति आई है बहुत बार और आपने शांत होने की कोशिश की है और अब तक नहीं हो पाए हैं। इस दूसरे प्रयोग को करके देखें, अशांति आए, स्वीकार कर लें कि मैं अशांत हूं, मैं आदमी ऐसा हूं कि मुझे अशांति मिलेगी, मैंने ऐसा कर्म किया होगा कि मुझे अशांति मिल रही है, मेरी नियति में अशांति का ही पात्र हूं मैं, इसे स्वीकार कर लें। इस अशांति से रत्ती मात्र संघर्ष न करें। ओशो कहते हैं, क्या होगा, जैसे ही आप स्वीकार करते हैं अशांति तिरोहित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वीकार का भाव ही उसकी मृत्यु बन जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं, अशांत हैं, अशांति को स्वीकार कर लें, लड़े मत, फिर देखें क्या होता है। स्वीकृति क्रांतिकारी तत्व है, और जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे छुटकारा उसी क्षण शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं, इसका थोड़ा प्रयोग करके देखें, 24 घंटे, ज्यादा नहीं। लड़ने का प्रयोग तो आप हजारों जन्मों से कर रहे हैं, एक 24 घंटे तय कर लें कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो भी होगा उसको मैं स्वीकार कर लूंगा, जरा भी विरोध द्वंद खड़ा नहीं करूंगा। देखें 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक नई हवा का प्रवेश हो जाएगा, जैसे कोई झरोखा अचानक खुल गया और ताजी हवा आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो गई। फिर ये 24 घंटे कभी खत्म ना होंगे। एक दफा इसका अनुभव हो जाए तो आप इसमें गहरे उतरने लगेंगे। शांत हो जाएं। कैसे? अशांति को स्वीकार कर लें, दुख को स्वीकार कर लें, मृत्यु को स्वीकार कर लें, फिर आपकी कोई मृत्यु नहीं है। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं।
आज के एपिसोड में म्यूजिक देवा प्रेमल मनीष व्यास और म्यूजिक फ्रॉम द वर्ड ऑफ ओशो से लिया गया है। तो मित्रों, ओशो को केवल सुने ही नहीं, उन पर प्रयोग करें और अपने ही अनुभव के प्रकाश में आगे बढ़ें। ओशो की ब्लेसिंग्स और प्रेम के साथ हमारा प्यार भरा नमस्कार आप सबको।
Regal sani regare sa renida nere gare Gare sa